मधुबन में जब क्लास के लिए कहते हैं कि आज क्लास कराना है, विचार चलता है कि भाई सेवा केंद्रों पर भाई बहनों को वहाँ क्लास कराना, भट्टियों में क्लास कराना, जगह जगह जाके प्रोग्राम अटेंड करने, वो तो बड़ा सहज है। यहाँ मधुबन में क्लास कराना और कहाँ बैठ के क्लास कराना, वो पुराने दिन याद आ रहे हैं, मम्मा बाबा के दिन याद आ रहे हैं। एक तरफ बाबा बैठते थे, एक तरफ मामा बैठते थे, इधर बाबा इधर मामा, बीच में भी कभी कभी कोई बैठ करके सुनाता था, तो वो भी दिल बहुत अच्छे थे। यही हिस्ट्री हाल है। और यहाँ जब बैठते हैं हिस्ट्री हाल में तो कितनी पुरानी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। बचपन के दिन थे वो हमारे, इसलिए अंदर संकल्प चलता है। फिर ये भी याद आता है कि जो प्यारे बाबा की मुरली है, क्योंकि बाबा से प्यार और मुरली से भी उतना ही प्यार। कभी कभी हमारे से पूछते हैं कि बाबा कितनी बार कहता है मुरली में, मुझे याद करो मुझे याद करो। आज भी रोज ही उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, राजधानी प्राप्त होगी, सारा बाबा कितना रोज बाबा कहता है। अच्छा, कई हम जाते हैं सेंटर पर तो पूछते हैं सके क्या करें, हम कारोबार छोड़ दें में, बाबा कहता मुझे ही याद करो। तो याद कैसे करें हम, हमने तो दफ्तर भी जाना है, माताएं बहनें कहती हमने परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और कितने कारोबार होते हैं लौकिक में। अच्छा, उसकी तरफ बुद्धि तो देनी पड़ती है, टाइम तो देना पड़ता है, और बाबा कहता मुझे याद करो, क्या करें, छोड़ दे मैं सब कुछ, बैठ जाए बाबा को याद करने के लिए, बैठ के याद करें बस, याद कर मैं ना क्या है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत से भाई बहने जो हैं, बहुत से वो याद के, बाबा कहता है मुझे याद करो पर उसको समझ नहीं पाते हैं। याद का यथार्थ रूप जिसे कहते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। शायद कर्म को अलग, योग को अलग, ऐसे अलग अलग समझते हैं। वो समझते हैं कि जैसे हमें याद में बैठना है, मैं ना कि हमें सब कुछ छोड़ करके बैठना है। कर्म करते हुए भी वो याद की स्टेज बनी रहे, या याद का यथार्थ स्वरूप क्या है, याद किसे कहते, कैसे याद। अंदर में बहुत अगर हम सूक्ष्म में जाएं कि याद का यथार्थ रूप क्या है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जिसे कहते, अंदर क्या है। जैसे जानकी दादी दो शब्द सारे देश विदेश में आप सबको पता है क्या कहती है, मैं कौन मेरा कौन। जब वो दादी कहती सब मुस्कराते हैं, मैंने देखा है कि दादी यही बात ये रिपीट करती रहती है दादी सब जगह पर। मैंने देखा है जब दादी बोलेगी ना मैं कौन मेरा कौन, सब मुस्कराते हैं बहुत करके। देखो दादी फिर कह रही है मैं कौन मेरा कौन, मगर इसमें ही सारा राज है। दादी क्यों बार बार ये शब्द कहती है मैं कौन मेरा कौन, क्योंकि हमारी वो स्टेज हम देखे ना प्रैक्टिकली, मैं कौन और मेरा कौन में ही तो याद है ना। मैं आत्मा हूं ये तो अंदर नॉलेज है, समझ है कि हमें नॉलेज है कि मैं आत्मा हूं, नॉलेज है। शरीर है आत्मा हूं। अच्छा, ये तो लेसन है हमारा, पहले दिन का पाठ पक्का है। पर कॉन्शियसनेस में, जैसे कि अंदर में, जैसे आइए इनको मैं देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, इसको सारा दिन हम देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, पर हमें क्या दिखाई देता है? ये बहन है, मेल है, फीमेल है, बड़ी उम्र है, छोटी उम्र है, यही सामने, यही आता है, याद तो सामने। और जिनको हम जानते पहचानते हैं उसका नाम रूप याद आता है, जिनको हम नहीं भी जानते पहचानते तो ये बहन है, छोटी है, बड़ी है, उम्र कैसी होगी इसकी, शरीर कैसा इसका है, ये चीजें तो दिखाई देती है सामने। हमारी जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये क्या चीज है? ये सोल कॉन्शियसनेस तो है नहीं है, ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं तो सारा टाइम जैसे कि अंदर में क्या है, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में कैसे रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज, शरीर ही तो देखते रहते हैं हम सारा दिन। हाँ, मगर बाबा ने फिर एक मुरली में सहज करने के लिए बताया कि बच्चे कि ये देह धारण किए हुए आत्मा ने देह को शरीर को धारण किया हुआ है, बस दिखाई, बाबा ने कहा शरीर देगा, बाबा ने भी कहा मुरली में शरीर दिखाई देगा, मगर समझ साथ में है कि ये आत्मा ने शरीर धारण किया, जीव आत्मा है। जीव आत्मा कहने से शरीर और आत्मा दोनों ही हमें दिखाई देता है, समझ आता है। मगर जिसे हम सोल कॉन्शियसनेस, सो पहले सोल कॉन्शियसनेस है आत्म स्मृति, फिर है परमात्म स्मृति। तो सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज अगर हमारी बन जाती है तो गॉड कॉन्शियसनेस की स्टेज फिर सहज है, जैसे वो ज्यादा मर्जी लगता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर सोल कॉन्शियसनेस की एक स्टेज ऐसी है जिसमें गॉड कॉन्शियसनेस भी है, मिक्स्ड है, दोनों चीजें मिक्स्ड है। अगर वो चीज हमारे स्मृतियों में रहती है, वो स्मृति अगर हम सब बातचीत हमने करनी है, कनेक्शन में भी आना है, व्यवहार में भी आना है, कारोबार में भी आना है, देहधारियों के साथ संबंध में भी आना है, सब कुछ, ये तो अंदर इंटरेक्शन तो देह से हो रहा है ना, संबंधियों से हो रहा है, परिवार है या जो भी है, देहधारियों से है, आत्मा पर देहधारी है। मगर मैंने इसमें देखा, मैंने अभ्यास करके देखा कि अगर जो जैसे दादी कहती है मैं कौन मेरा कौन, ये अंदर गहराई में जाओ, अगर गहराई में अगर हम जाते हैं ना, अगर हमें ये स्मृति रहे ये आत्मा है वो तो है ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप ये समझे, अगर किसी को हम ये देखते हैं कि ये आत्मा बाबा का संतान, गॉड को, जैसे दोनों बातें आ गई, आत्मा भी है और बाबा की है, ये आत्मा है बाबा की है, जैसे मैं कौन मेरा कौन, हम सब जो हैं, खास करो दुनिया वाले भी सब, वैसे तो आत्मक दृष्टिकोण से सारे कोई और है ही नहीं, किसी देश में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, एनी वेयर चले जाओ, भाषा भेद, रंग भेद, सब कुछ, प्रांत भेद, सब कुछ चल है, ठीक है, भेद है, पर है कौन? ज्ञान में है या नहीं है, ईश्वर की संतान तो है, वो जाने या ना जाने, भगवान को जाने या ना जाने, अच्छा वो भी ठीक होके नहीं जानता है, तो है तो उसका ना, ये नॉलेज अगर हमारे कॉन्शियसनेस में रहे, कर्म में रहे, ये बहन है वो तो ठीक है, बहन है, पर ये जिसे, जैसे हम जानकी दादी से बात करेंगे ना फोन पर या किसी उधार करेंगे ना, वो क्या कहेगी, जैसे ही फोन उनके देंगे ना कि दादी अमीरचंद भाई बात करता है, मेरे भाई, ऐसे कहेगी, मेरे भाई, भाई नहीं, देखो क्या एक शब्द में कितना गहरा राज है, मेरे भाई, अपनेपन की फीलिंग देती है दादी। आप देखो, हम भी जब साकार बाबा के समय पार्टियों में आया करते थे, जब लौटते थे यहां से तो हर कोई ये कहता था बाबा ने मुझे आपसे ज्यादा प्यार किया, 8-10 होते थे, पर हर एक को ऐसी बाबा फीलिंग देता था। हम एक दूसरे को फीलिंग नहीं देते हैं, बातचीत करते हैं, हम संबंध में आते हैं, हम बातचीत करते हैं, अच्छा भी बोलेंगे हम, पर फीलिंग उसको फीलिंग नहीं देते हैं। आप देखिए लौकिक में ये फीलिंग कितनी इजी है, लौकिक में कितनी इजी है ये फीलिंग। आप मार्केट में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आपको अपनी लौकिक बहन या लौकिक भाई सड़क में नजर आ जाए, आपको फीलिंग क्या होती है? फीलिंग क्या होती है उस समय पर? आपको कहेगा थोड़ा कोई आप मुस्कुराओ, या हम बनावटी मुस्कुराए, थोड़ा सा मुस्कुराते थोड़ा है कि जैसे फोटो को खींचा तो नेचुरल, हमें नेचुरल आती है कि मेरी बहन है। अपनेपन की हमें, हम फीलिंग देते हैं, लेते भी हैं देते भी हैं, अपनेपन की ये फीलिंग ब्राह्मण परिवार में, दुनिया की तो बात छोड़ दो, ब्राह्मण परिवार में भी ये बहुत कम है, बहुत कम है। हमें दादियों में ये काफी नजर आई है। मैं बहुत दादियों के नजदीक रहा हूं, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, उन्होंने पालना की हमारी। जैसे हमें उनसे ना हमें फीलिंग आती थी, फीलिंग। एक बार मैं आया पांडव भवन में, बहुत पहले की बात है, दादी यहां सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी, मुझे कुछ काम था, मैं पहले शशि बहन के ऑफिस में अंदर चला गया, दादी देख रही थी, तो मैं कारोबार था, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, लिस्ट आई, कुछ कारोबार था, मैं शशि बहन के ऑफिस में, उन्होंने किसी को खास भेजा, दादी प्रकाश मणि ने किसी भाई को भेजा, अमीर चंद भाई वहां है, उसको बुला के ला। मुझे कहती है पहले मुझे मिलना था, पहले पहला कारोबार होता है, पहले कारोबार होता है या पहले मैं सामने बैठी हुई नहीं हूं, मुझे देखा नहीं आपने, अंदर इसे कैसे फीलिंग कैसे आती है। एक बार मैं जब जानकी दादी क्लास कराया करते थे, अभी कराती पर चल करके आती जाती थी, चलती फिरती थी, तो मैं यहाँ आ गया तो दादी जानकी भी उधर से आ रही थी, उधर से ओम शांति भवन से, मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया, वो मेरी कान में कहती है ओम शांति भाई। उस वक्त आपको देखो कैसे फीलिंग कैसे आती है आपको, अब वो कह के चली गई दादी। एक बार एक भाई ने सुनाया था, अमृतसर का भाई था, जगदीश भाई, प्रिंसिपल था, एक स्कूल चलाता था, बहुत डेडिकेटेड था, उसको योग का बहुत शौक था। तो एक बार वो आ गया पांडव भवन या मधुबन में आ गया, और सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाता था, उठ करके यहां शांति स्तंभ में बैठ गया योग करने के लिए। नवंबर का महीना था, सर्दी शुरू हो गई थी, तो दादी भी आई, दादी आती थी तब अमृत वेले, दादी प्रकाश बने, तो अमृत वेले बैठने से पहले बाहर चक्कर लगाने चले गई, देखा बैठा हुआ है, जाके नजदीक आती, कौन है? जगदीश, जगदीश भाई यहां की ठंडी शुरू हो गई है, यहां ऐसे कुछ लिया नहीं, ऐसे बैठ गए योग करने के लिए, सुपर विशाल वगैरह लेके, ठंड लग जाएगी, ऐसा कह के दादी चली गई। थोड़ी देर के बाद दादी लौट आई और दादी ने अपनी शाल उसके ऊपर डाल, आप देखिए उसकी स्टेज देखिए, वो कहते मैं तू आपको ब्याह तू या तेरे बैठना, अपने मन की फीलिंग आप देखो, ये चीज है हमें, हम अपनेपन की फीलिंग किसी को कितना देते हैं। नॉलेज है हमें ये, देखो नॉलेज, नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज है कि ये आत्मा शिव बाबा का बच्चा है, ये नॉलेज है हमें, शिव बाबा का बच्चा तो मेरा कौन है, कोई भी है, ये नॉलेज हम सबको है कि ये सब हम ब्रह्मा बाबा के, हम खास थोड़े से, ये तो ब्राह्मण जो है इनको हर एक को नॉलेज है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये नॉलेज हमें है, दुनिया की बात तो छोड़ो, मगर जो ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, एक बाप हमारा है, हम एक परिवार है, ये फीलिंग। और आप देखो कि ये फीलिंग ना होने की वजह से कई कठिनाइयां पैदा हो जाती। भाव स्वभाव के संस्कार टकराव, कई चीजें, कितनी चीजें अंदर पैदा हो जाती हैं। इसके साथ रहना, इसके साथ नहीं रहना, कितने ये हमारे पास तो रोज कई कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस बैंड के साथ रहूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी। तो वो बहन है, ये बहन नहीं, क्या चीज है? लौकिक परिवार में ये चीजें नहीं है। लौकिक परिवार में एडजस्टमेंट होती है। अब उसमें क्या चीज है कि उनको पता है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। वहां वो फीलिंग है कि ये मेरी बहन है, यहां वो फीलिंग नहीं। फीलिंग नॉलेज है कि ब्रह्मा मुख वंशावली है हम, वो फीलिंग नहीं। दादियों को हमने ये देखा कि वो फीलिंग देते भी थे, लेते भी थे फीलिंग। हम लोग जब नए नए ज्ञान में चले, हमने देखा था कि दो दादियां थी, कबनोर दादी एक, उनके साथ और दादी छोटी बहनें बाद में सेंटर पर रहना शुरू हुई जब हम आए। अब दो रहती थी, किसी समय दिन में किसी कारण से हम लोग कोई कारण से दिन में कुछ हम सेंटर पर आ गए, एक डेढ़ बजे आ गए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें बिना खिलाए कुछ भेजेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। और जबकि हमें पता है कि दो ने अपने लिए खाना बनाया। नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, कोई खाने के टाइम आ जाएगा, कहेंगे ये जाए तो फिर हम खाना शुरू करें, क्योंकि हमने तो दो के लिए खाना बनाया है ना। खाना बनाया उतना है, उसके लिए थोड़ा बनाया हमने, हमने उतना ही तो खाना बनाया है। इसके लिए थोड़ा है हमारे पास, और इसको खिलाएंगे तो खुद क्या खाएंगे। ये थॉट नॉर्मल थॉट्स है, नॉर्मल थॉट्स यही है कि ये तो मेरे लिए है ना। मगर उनों को हमने, दादियों को देखा, खुद भले थोड़ा सा खा लेंगे, किसी को थोड़ा खिला देंगे बेशक, मगर खाने के टाइम को आएगा तो उसको कुछ बिना बाबा के घर का भोजन थोड़ा भी खिला के भेजेंगे। अपनेपन की फीलिंग जैसी होती। हम लोग जब ज्ञान में शुरू में आए थे, तब बरसात के दिनों में हम सेंटर से जब घरों से आते थे, बरसात का दिन होता था ना, तो भाई मुरली तो सुननी है, जो पक्के होते थे। अब मुरली के सुनने हम चले जाते थे, बरसात हो रही है चाहे प्रसादा ले लिया, कुछ ले लिया, मगर हमें पक्का पता होता था कि आज बरसात हो रही है ना, तो क्लास के बाद गर्म हलवा जरूर एक खिलाया जाएगा। अरे भाई ये सब ठंडी में आए हैं। एक बहन मुरली सुनाएगी, दूसरी उस टाइम पीछे हलवा गर्म गर्म बनाएगी सबको। मुरली पूरी होगी, सबको थोड़ा थोड़ा खा के जा, ठंडी में आए, देखो बरसात में आए। दैट वो हलवा नहीं लगता था हमें, वो फीलिंग देता था, अपनेपन की फीलिंग देता था। केयरिंग, जिसे दादी कहती है शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग और केयरिंग आप देखिए बहुत जिनों में है। आप दादी जान की है, सब जानते हैं, बहुत ज्यादा उनकी ये स्टेज है, बड़ी हायर स्टेज है शेयरिंग और केयरिंग की, जिसे हम कहते हैं बहुत। अपने पर की फीलिंग देती है। देखो ऐसे नहीं कोई चीज गिफ्ट देना, ये करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैंने कई दफा देखा है कि मुझे काम से तीन बार कई दफा जाना पड़ता है कॉटेज में दादी के पास, जानकी दादी को, तीन बार ही उन्होंने स्लोगन भी देना है, वरदान भी देना है, बादाम भी देना है, टोली भी देनी। मैं कहूंगा मैं पहले ले गया, तीन बार। जैसे उनको जैसे अंदर ही तो आएगा नहीं कि ये आया है और वैसे चला जाएगा। हरे के लिए, फिर मेरे लिए नहीं है, हरे के लिए। ये इसको कहते हैं कि ये सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस की स्टेज, जिन आत्मों की ये स्टेज होती है ना, उनके ये नेचुरल कर्म हो जाते हैं, नेचुरल स्वभाव हो जाता है। हरियाणा का गवर्नर आया, मुझे याद है सोशल विंग की वो कॉन्फ्रेंस थी शांति वन में, हमने दादी को कहा दादी गवर्नर में, हाँ ठीक ले आना ना, अब गवर्नर आएगा तो एडीसी भी आएगा,
ADC آئے گا تو اس کے چپل جوتے اتارنے والا PN وہ بھی ساتھ ہی آئے گا, چار لوگ تو آئیں گے آئیں گے. جو گورنر کو سوگات دی وہ ADC کو دی, اسے چپٹاسی کو. اب لوگ دیکھ رہے تھے دادی وہ کھڑا نہیں تو اس کو بھی لیا. کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر کوٹ ہاؤس میں, دادی کے پاس کچھ کام سا ہوتا ہے نا, ہنسا کو کہتی باہر والے کو آئی ٹولی دی, وہ جو پیرے پر کھڑا بولا اس کو بھی ٹولی دو, وردان بھی دو, سلوگن بھی, سب وہ باہر کھڑا ہوا. ہم لوگ کہیں گے کہ یہ تو بھائی پیرے والا ہے نا, دیکھیے اب باڈی کانشیس دیکھیے, یہ دس از باڈی کانشیس, سول کانشیس میرا سارے سول کانشیسنیس کی اسٹیج میں جیسے بیس باپ ختم ہو جاتے. ایئرپورٹ پر آئیں گے سب کو ٹولی بانٹتی جائیں گی, سب کو ٹولی بانٹتی جائیں گی, کوئی دور کھڑا ہوگا وہ بھی دوڑ کے آئے گا, نہیں کھڑے ہوگا کہ اس کو بلا, وہ جو کھڑا ہے وہ بھی بلا, کوئی رہ نہ جائے. اپنے پن کی فیلنگ, دس از سول کانشیس, میں اس کو کہتا ہوں. یہ سے بابا کہتا ہے کہ آتم استھتی میں نا, کہ مجھے میرے باپ کے بچے نظر آئے, سارے اپنے نظر آئے, اور یہ ریالٹی ہے. ہمارا گیان یہی کہتا ہے کہ ایک بابا ہے, ون گاڈ ون فیملی, ہم گیت گاتے ہیں. ہمارا یہ گیان کہتا ہے کہ ایشور ایک ہے, ساری آتم ہے, اس کی سنتان ہے. گیان یہ کہتا ہے, پریکٹیکلی جیسے ہم اس کو اپنا سمجھتے نہیں ہیں, جب ہم اپنا نہیں سمجھیں گے وہ ہمیں کون سمجھے گا. ہم ڈسٹینس من میں بنائیں گے وہ بھی ڈسٹینس ہو جائے گا. دادیوں کو اب دادی جان کی ڈائمنڈ ہال میں جائے گی, سارے دوڑنے لگ جاتے ہیں, دوڑتے ہیں, دادی آ گئی. کیا کارن ہے؟ باقی بھی کلاسز تو بڑی اچھی اچھی کلاسز کراتے ہیں, دادی تو کچھ خاص سناتی بھی نہیں ہے, پر دادی فیلنگ دیتی ہے. دادی کو جب لوگ دیکھتے ہیں وائبریشن ملتا ہے, دادی اپنے پن کا, اس کو کہتے ہیں سول کانشیسنیس. اپنے پن کی, میں آتما ہوں, شیو بابا کا بچہ ہوں, یہ بھی شیو بابا کا بچہ, یہ ہم ایک کی ہیں, ایک ہے, ایک کی ہیں ہم, وہ فیلنگ نالج ہے. اس لیے اس کو بھی شاستری گیان کہتے ہیں, اکیڈمک نالج کہتے ہیں, گیان ہے ویوہارک بہت فرق ہے. مجھے دادی پرکاش منی کہا کرتی تھی, میں جب آیا کرتا تھا خاص بلا کے, امیر چند ادھر کوئی کام ہونا کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ نہیں کہنا مجھے دادی بزی تھی, نو میں ہر وقت ہی ایزی ہوں, یہ کہا کرتی تھی مجھے. جان کے دادی کو کہی نا کہ دادی آپ بزی تھے, دادی کو اچھا ہی نہیں, یہ شبد ہی نہیں اچھا لگتا کہ میں اس لیے کوٹیج میں نہیں آیا کہ آپ بزی تھے. میں بزی کس میں ہوں کہتی, کس میں بزی ہوں, بلی تو رہی ہوں نا, اس کو مل رہی ہوں, آپ کو نہیں ملوں گی, بیٹھ جاؤ نا سامنے آ کے بیٹھ جاؤ, ان کو اچھا لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی, پھر میں اس میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی میسج, وہ تو ہے کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دھیان رکھنا پڑتا ہے, کنٹرول رکھنا پڑتا ہے, زیادہ نہ جائیں تھوڑے جائیں, وہ تو ہیلتھ کے خیال سے, ان کو اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کو فیلنگ دیں گے اپنے پن کی, ہر ایک کو فیلنگ دیں گے, چھوٹا ہو بڑا ہو, نیا ہو پرانا ہو, بھائی ہو بہن ہو, بچہ ہو بوڑھا ہو, ہر ایک کو فیلنگ دیتے ہیں. دس از سول کانشیسنیس, یہ اسٹیج ہے جو ان کی انہوں نے اسٹیج بنائی ہے, جیسے یہ اپنے پن کی فیلنگ دے دے کر کے ہر ایک کو یہ اپنا ہے. آپ کبھی بھی آپ کوئی بھی آپ انبھو ہوگا, جن کو تو انبھو ہے, کوئی بھی آپ دیکھو دادی کے پاس چلے جاؤ, کوئی بھی ہر ایک کو اسی بھاؤ سے دیکھے. اس کو کہتے ہیں گیان ہمارے کرم میں ہے. گیان تو ہے, جب گیان کرم میں آتا ہے تب اس کا جو ویوہارک سروپ بنتا ہے نا, وہ ونڈرفل ہے. वो दिव्यता है, डिविनिटी है, उसको डिविनिटी कहेंगे। वैल्यूज इन एक्शन है, वैल्यूज इन एक्शन है, वैल्यूज तो है, हर एक वैल्यूज को जानते हैं, अशक्तियां कौन सी हैं, दिव्य गुण कौन से हैं, हर एक को नॉलेज है। उसके भाषण भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्लासेस भी कराएंगे, सब कुछ, सब कुछ ठीक है कर्म में। किसको अभी हमें दादियों को देख के हमें फीलिंग आती कि इनके अंदर गुण है, इनके अंदर शक्तियां हैं, हमें फीलिंग आती। गुण और शक्तियां अगर व्यवहारिक स्वरूप में होगी तो फीलिंग जरूर देगी, जरूर फीलिंग आएगी। नेचर नेचर नेचर, वास्तव में ये गुण और जो शक्तियां हैं ये वास्तव में हमारा सतयुग में हमारा वास्तविक स्वरूप में थे ना हम लोग। सतयुग क्या है और अब क्या है, क्या फर्क क्या आ गया? वहां ये गुण और शक्तियां हमारे कर्म स्वभाव में हैं, नेचुरल है बस। सब लोग मुस्कुराएंगे, सब लोग मधुर बोलेंगे, सब लोग धीरजता से बोलेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, नेचुरल स्टेज है वहां पर, वो थी स्टेज। ये धीरे 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 ये स्टेज में फर्क आता चला गया। अब जैसे कोई कोई किसी में कोई नजर आएगा तो हम उसको कहेंगे ये तो देवता है, किसी किसी में कोई थोड़ा सा कोई अच्छी क्वालिटी नजर आएगी हमें, हम कहेंगे ये तो देवता है, क्योंकि तो देवता में नेचुरल ये स्टेज है ही है देवता में। क्या अंदर क्या चीज है, अंदर और गहराई में जाए, अंदर और क्या चीज है, और गहराई में जाओ इस चीज को। हम सारा दिन मुरली सुन ली हम लोगों ने, योग भी अमृत वेले कर लिया, अच्छा सारा दिन आत्माओं के जो गुण और स्वभाव हैं उनके प्रभाव में आते हैं। बाबा का प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर, प्रभाव वो उनका है जो हमारे साथ रहते हैं, और वो तो फिर वो आत्माएं हैं। अभी संपन्न तो नहीं है ना, संपूर्ण तो नहीं है ना, उनके अंदर तो छोटी मोटी कमियां हैं, हर एक के अंदर है। अब उनकी जो छोटी मोटी कमियां हैं ना, वो प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा, जो हमारी स्टेज को वो नहीं बनने देता जो नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल हमारी स्टेज को क्यों नीचे, क्या कौन सी चीजें नीचे ले आती है? आज बाबा ने मुरली में, सारी मुरली में क्या कहा, कई चीजें बताई। ये तो बाबा का प्यार है वास्तव में। आज की मुरली को कितनी बार भी पढ़ो, जैसे जानकी दादी कहती 8 बार मैं मुरली पढ़ती हूं, इससे मुरली से हमें बाबा का प्यार बहुत नजर आता है कि बाबा हमें कैसे देखना चाहता है। बाबा को जो हमारी छोटी मोटी चीजें हैं ना, बाबा को नहीं अच्छी लगती कि बच्चे ये मेरी संतान होकर के, ईश्वरीय संतान होके और देवता बनने वाले हैं, वही आत्माएं जो देवता, इनके अंदर आज क्या संस्कार क्या है, ये इन चीजों का अगर बाबा अंदर बाबा को थॉट क्या है, अगर इन चीजों का प्रभाव में ये रहेंगे तो इनकी स्टेज कैसे बनेगी? ये छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे और चीजों के भी, तो ये जो असली स्टेज है वो कहां है? वो स्टेज तो बहुत दूर की है ना। फिर मन बुद्धि, आज बाबा ने कहा एकाग्र होती नहीं योग के अंदर बैठते हैं बच्चे, एकाग्र को क्यों नहीं होती है? दूसरे प्रभाव में, आत्माओं का प्रभाव में हम सारा समय रहते हैं, बहुत समय। और उसकी विधि जो सहज विधि जो मैंने देखी है कि सहज विधि यह है कि हम मुरली के प्रभाव में रहे, तो हो सकता है ये करके कोई देखे, अनुभव करके देखे। अगर हमारी मन बुद्धि में मुरली का प्रभाव रहेगा कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, अंदर 4-5 बार भी, अब 4-5 बातें भी मुरली की अगर हम अंदर ही अंदर रिपीट करें, 4-5 बार 4-5 बातें बस, आप देखो उसके रिजल्ट देखो, 2-4 दिन में आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा। सुबह मुरली सुनी, अच्छा नाश्ता करने लगे,
अच्छा आज बाबा ने क्या कहा था, ये बच्चे ये छोटी मोटी कमी नहीं आपकी होनी चाहिए। अच्छा जी, लोभ लालच के लिए बाबा ने बताया नहीं होना चाहिए, बुद्धि एकाग्र बच्चे भड़कनी नहीं चाहिए योग में। दो मिनट के अंदर आप पांच बातें रिपीट कर लोगे, फिर आप पानी पीने लगो कुछ खाने, फिर दो फिर रिपीट कर लो पांच बातें, खाना खाने लगो फिर पांच बातें रिपीट कर लो, सारे दिन में पांच बातें पांच बार रिपीट कर लो, आप देखो मुरली का प्रभाव कुछ तो रहेगा ना। मुरली मैंने बाबा, मुरली याद है बाबा याद है, सिंपल बाबा की याद का तरीका है मुरली, जिसकी बात याद है वो याद है ना। हम कहते हैं मुझे उसकी याद आ रही, उसकी बात याद आ रही, हमें मुरली याद आ रही है बाबा याद आ रहा, सहज वो सहज तरीका है, मगर प्रैक्टिकली नहीं होता। मैं खुद अपने साक्षी होके कहता हूँ, जैसे बाबा के बाबा ने आज सुनाया ना कि मैं भी याद में मुझे भी कठिनाई आती, हम लोगों ने मैं प्रैक्टिकली देखा कि मुरली को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर आपने सुबह, मैंने देखा विदेशियों को देखा, उनको आदत है जैसे क्लास के बाद वो फिर ना मुरली पर लिखी होती है डायरी पढ़ने लग जाते हैं, मनन करते हैं मुरली पर। आज की मुरली में इतनी बातें हैं, इतना है, इतना टाइम चाहिए, जैसे हम हमारे पास टाइम अगर हम देंगे तो हमारा काफी टाइम सफल हो जाएगा। आज के वरदान के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा सुन लिया बस ठीक है, बहुत करके मैंने देखा है मुरली सुनने के बड़े इच्छुक हैं, दौड़ते हैं, मुरली बिना नहीं रह सकते, मुरली जरूर सुनाओ बहन जी, जल्दी जल्दी सुनाओ, टाइम कम है, याद प्यार गुड मॉर्निंग, उसके बाद सारा दिन मुरली का मैं नहीं कुछ नहीं, क्या सुना क्या धारण करना है क्या, ये मुरली तो मुरली हमारी पढ़ाई है वास्तव में, मगर हम सारा दिन इतने बिजी हैं, इतने कारोबार में बिजी हैं कि बाबा ने क्या और बाबा याद क्या है, बाबा की मुरली याद नहीं है तो बाबा याद कैसे होगा, जिसकी मुरली मुरली याद है तो बाबा याद है। अब आज के वरदान को पूरा दो दिन लगे क्लास कराऊं मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को, कि वरदान के बारे में भी इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग आप करो, जिसे संतुष्टता की बात बाबा ने कही, वंडरफुल है, आप देखिए आप कि अपने आप से संतुष्ट, फिर मेरे से सारे संतुष्ट, फिर मैं सबसे संतुष्ट, और बात मत पूछो। ये टॉपिक ऐसा है जो लास्ट तक चलेगा, लास्ट तक टॉपिक चलेगा, पहले में ही फेल हो, पहले में कितने फेल हो जाएंगे अपने आप से संतुष्ट हो। आप किसी को भी अपने आप से कौन संतुष्ट है, नहीं। जो अपने आप से संतुष्ट नहीं, अच्छा पहला दूसरे वो दूसरे से संतुष्ट हो और दूसरे से संतुष्ट हो, फिर और बड़ी बात, क्योंकि दोनों में सीधी कौन है, अपने आप से संतुष्ट फिर दूसरों से संतुष्ट, ये थोड़ा सा इजी है, मेरे से दूसरे वो तो सब्जेक्ट ही कुछ और है। हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, अपने आप को नहीं देखते भी, मैंने क्या पुरुषार्थ कर रहा हूं दूसरे को संतुष्ट रखने का या करने का, मैं अंदर में क्या पुरुषार्थ करता हूं, बड़ा गहरा रहस्य है, इसी में सारा पुरुषार्थ है, इसमें अपना परिवर्तन है, इसमें सारी एफर्ट्स है। और हम लोग आमतौर पर क्या कहेंगे, अगर कोई हमारे से संतुष्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे उसकी तो नेचर ही ऐसी है। बस, और बाबा कहते करो संतुष्ट किसी को करो। जैसे कई ऐसे मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, कई ऐसे टॉपिक है, ये कई ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, वो हम लोगों ने अपने कोर्स से बाहर रखे हुए, वो अभी कोर्स में लिए ही नहीं है,
कि ये भी तो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने इसकी तैयारी करनी है, इसे पास नंबर लेना, इसे रिजल्ट लेना, मेरे नंबर लेनी है ना, तो वो हमारी अभी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं ना, भाई मैंने साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ, मैंने आर्ट्स लिया हुआ है, ऐसे ही मैंने देखा कोई सब्जेक्ट ब्राह्मण लिए ही नहीं हुए कि दूसरे को संतुष्ट करूं। ये हमारा टॉपिक है, अभी इसकी क्लास नहीं शुरू हुई, इसकी पढ़ाई नहीं शुरू हुई कि दूसरे को संतुष्ट। मैंने सचमुच ऐसी स्टेज बनानी है जो मेरे से सारे संतुष्ट हो। और दादियों ने स्टेज बनाई है स्टेज बहुत, इधर उन्होंने ये नहीं है कि ये ऐसा है। बाबा ने देखो क्या कहा मुरली में, बाबा की मुरली हम पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूं कई कई बाबा की मुरली में ऐसी बाबा की शिक्षा आती है, ऐसी लाइन आती है जो सारा टाइम अगर याद रहता तो हमारा ब्राह्मण जीवन चेंज हो जाए, प्रेजेंट चेंज हो जाए। देखो बाबा ने एक लाइन में आपको सुनाता हूं, बड़ी वंडरफुल लाइन है, मुरली में आई थी। बाबा कहता है बच्चे कभी ना कहो ये ऐसा है ये वैसा है। देखो क्या मैंने इसका, आप उसके नेगेटिव को क्यों देखते हो। और अगली लाइन में बाबा ने वंडरफुल कहा, बाबा ने कहा कभी ये ना कहो ये ऐसा है या वैसा है, तुम्हें बाप जैसा बनना है। बताइए क्या मायना इसका कि बाबा कभी किसी को कहेगा ये ऐसा है या वैसा है, बाबा कहेगा मेरा है, कैसा भी है मेरा है ना। चलो मैं कहता हूं इतना भी कह लो कि ये ऐसा है या वैसा है, पर ये तो कह लो मेरा है। इतने भी कहने में भी कितना मजा आता है ना, जैसे अपंग बच्चे को भी माँ बाप गोदी में बैठाए रखते हैं ना, कंधे में बैठा के घूमते रहते हैं ना, अपंग है पर वो क्या कहते हैं मेरा है ना। अगर इतना थॉट भी हमारे में आ जाए भी चलो किसी में छोटी मोटी कमी है, अच्छा कमी नजर आती है, पर हम ये भी तो कहना ये है तो मेरा ना, कितना फर्क पड़ जाएगा। उसकी कमी से हमारे अपनेपन को खत्म ना कर देवे। और ये प्रैक्टिकल ये होता है, हम डिस्टेंस बना लेते हैं। अगर कोई हमारी तरफ नहीं देखता, अच्छा हम भी नहीं देखेंगे, वो आ रहा है हम भी ओम शांति नहीं करेंगे। क्या चीज है देखिए, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस बनाते हैं। बाबा कहता है डिस्टेंस खत्म करो, नजदीक लाओ। स्नेह प्यार कैसे देंगे, स्नेह प्यार ऐसे दिया जा सकता है। ये चेंज ये डिविनिटी तब आएगी अंदर की, जो जिसे बाबा हमारे अंदर जो डिविनिटी देखना चाहता है वो ऐसे आएगी जब हम हरे की अपनापन है। बाबा ने एक मुरली में कहा किसी भी बच्चे को विशेषता आपको नजर नहीं आती, एक विशेषता जो है कि उसने बाबा को जाना और पहचाना, ऐसे आपको कहां मिलेंगे। हमें जो उसकी विशेषताएं है वो नजर नहीं आती हैं, और जो कमियां है वो नजर आती हैं, और कमियों के कारण हम डिस्टेंस बना लेते हैं, कमियों के कारण हम व्यवहार बदल लेते हैं, कमियों के कारण हम लोगों के अंदर के रिलेशन में कितना फर्क आ जाता है। और कई दफा तो इससे आगे की स्टेज पर हमारी हो जाती है कि उसकी कमियों का वर्णन भी करने लग जाते, एक दूसरे के साथ शेयर करते कमियां। उसके लिए बाबा ने मुरली में कहा था, बहुत पहले की मुरली है, बाबा ने कहा था किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है, किसी के अवगुण का वर्णन करना महापाप है। बताइए अब हम क्या पर कई दफा सोचता हूं, मैं कहता हूं पाप और महापाप बाबा बता भी रहा है, डेफिनेशन भी दे रहा है, प्रैक्टिकली किसी के कमी का वर्णन क्यों कर। और इसलिए भी गहराई इसकी ये है, महापाप क्यों बाबा कहता है, बाबा सारी सृष्टि से तमोगुण खत्म कर रहा है, सतयुग ला रहा है, और मैं किसी के अवगुण का चिंतन करके तमोगुण बढ़ा रहा हूं, एंटी हूं बाबा के एंटी। कोई रियलाइज करे इस बात को कि किसी की कमी का चिंतन करना बाबा के कार्य के विपरीत है। बाबा कैसे प्यार करेगा और शक्ति देगा उस आत्मा को? जो बाबा कार्य कर रहा है, मेरे से दूसरा कार्य हो रहा है प्रैक्टिकली, तो मेरे में ताकत कहां से आएगी, शक्ति कहां से आएगी? बाबा ने एक मुरली में कहा, देखो अव्यक्त बाबा की मुरली के ये शब्द है, बच्चे मुरली को सुनना और पढ़ना अच्छी बात है, पर बच्चे पढ़ करके सुन करके अगर उस पर नहीं चलते उसका भी हिसाब है। अभी ये विचार किया कभी किसी ने? मुरली को पढ़ करके और सुन करके उस अनुसार उसको पुरुषार्थ ना करना। अच्छा कितने परसेंटेज हम बने हैं वो अलग बात है, पर हमारा अटेंशन तो है ना। हमारा अगर अटेंशन ही नहीं है उसके ऊपर, मुरली के ऊपर, तो फिर बाबा फिर क्या होगा, फिर पढ़े फिर तो कुछ। मुरली के अनुसार भी अगर हमारा जीवन मुरली में सारे, तो और क्या चीज है? इसलिए मेरी भावना ये रहती है कि हम बहुत गहराई में जाए। जो हमारे से हो रहा हो तो अच्छा है, ठीक है, हमारे ये नहीं कि हमारे से कुछ हो नहीं रहा है। वो हमारे प्लस पॉइंट अगर गिनती करें दुनिया के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, पर माइनस, बाबा ने कहा ना प्लस माइनस दोनों देखो। बाबा ने प्लस माइनस दोनों किस लिए कहा? कि जरूर प्लस और माइनस है ना। हमारा ध्यान माइनस की तरफ ज्यादा देना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थी की वास्तव में जो निशानी ये है कि उसको अपनी कमी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी, और वो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। पहले तो कोई समझे कि मेरे अंदर कमी है, मैं तो भाई कई दफा सोचता हूं कि मुझे तो कोई नजर नहीं आता, कोई समझे मेरे अंदर कमी है। आप किसको कहेंगे कि तो कहो जरा कि तेरे अंदर ये कमी है, पता लग जाए आपको, वो कहेगा अपने आप को तो देख। किसी को किसी की कमी के बारे में बताना बाबा बता रहा है। कमियों की तरफ अगर ध्यान जाने लग जाए, और बल्कि मैं कहता हूं ध्यान में आने लग जाए, ध्यान जाने लग जाए तो अलग बात है, ध्यान में आने लग जाए अपनी कमी, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे ध्यान में कुछ चीज आने लग जाएगी कमी, तो हो सकता है कि हम उसको, पर ध्यान में आए तो है ना। बहुत बहुत इसमें सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अपने आप को जानना, निरीक्षण करना, अपने आप को अंदर बैठना, अपने आप को देखना, ये रियल पुरुषार्थ है। दादियों से बामा बाबा ने ये पुरुषार्थ करवाया। मम्मा के यज्ञ में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही थी कि मम्मा घंटों घंटों दादियों को रियलाइज कराती थी, रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइजेश करो। और उसके लिए कैसे विधियां अपनाई गई थी, आज विधियां अपना सकते हैं हम लोग कभी? जो मम्मा बाबा के टाइम की विधियां थी, रोज रात को किसने किसी की कमी देखी आके बताओ, अपनी कमी बताओ, नहीं तो किसी ने देखी वो बताओ, आज बता के दिखाओ कोई। मगर वो संपन्नता उन्होंने बाबा ने बनाना था उन आत्माओं को, उनके लिए वो विधि बाबा ने अपनाई कि ताकि कईयों को अपनी कमी का भी पता नहीं लगता है। इसलिए कहा गया कि जिसने देखा है वो भी सुनाओ। वो सुनाया करते थे, वो भी टाइम था, क्योंकि बाबा को उन आत्माओं को संपन्नता की तरफ ले जाना था। वो हमारे फाउंडिंग फाउंडेशन से, हमारे फाउंडर्स हैं, उन्हों से सारा ये गाके बढ़ रहा है। जो वो आत्माएं थी मामा बाबा के साथ रहे, तो उनको तो पक्का बनाना था ना बाबा ने, इसलिए वो विधि उस वक्त अपनाई गई, या तो अब नहीं बना सकते वो विधि। आप देखो एक विधि यज्ञ की आपने सुनी होगी कि कुछ कुछ समय के बाद माला बनाई जाती थी। अब बताओ, माला लगाई जाती थी चाट पर, पहला नंबर कौन है, दूसरा, हर कोई बनाए। तो दादियां सुनाया करती थी कि लास्ट में 108 में अपना नाम लिख देते थे, मैं भी माला में हूं, चलो 108 में। कितना रियल पुरुषार्थ की स्टेज थी वो, कि मैं अपनी जजमेंट करूं कि मैं 108 के अंदर हूं। आज बाबा ने माला की निशानी बता दी कि माला में आ सकते हो बच्चे, 108 में आ सकते हो भजंती माला में, पर तीन चीजें, तीनों ही ऐसी चीजें मैंने कहा ना, तीन चीजें जो साधारण नहीं है। अब मैं अपने से संतुष्ट, मेरे से, मैं सबसे संतुष्ट और मेरे से सारे संतुष्ट। तो माला बना के पास भी डोनर, मगर हाँ वह बाबा के बच्चे ऐसे नहीं है। आपको ऐसे भी बाबा के बच्चे मिलेंगे जो मुरली पढ़ करके, मुरली सुन के या पढ़ करके उस पर अच्छी ही मेहनत करते हैं अपने लिए। हैं, चाहे तुम्हारा में हैं कितने हैं, ऐसे बच्चे हैं बाबा के जो बाबा जो विधि सुनाता है उस अनुसार विधि अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ तो सारे ही करते पर विधि अनुसार, कि मैंने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, मतलब लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ होगा ना। जैसा लक्ष्य वैसे एम, फिर एफर्ट्स, फिर रिजल्ट। तीन स्टेजेस है, एम, एफर्ट्स, रिजल्ट। बाबा ने चौथा भी बताया था, फिर एम, एफर्ट, रिजल्ट। चौथा बाबा ने क्या बताया था, रीट्राई। अगर रिजल्ट ठीक आया फिर करो, ताकि भी उस रिजल्ट तक पहुंचना ना मुझे। मैंने एफर्ट्स कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं अभी आ रहा है, मोर एफर्ट्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।